आर्यांश दीवा को छोड़कर कियाना के पास चला गया था। इस वजह से दीवा बहुत परेशान हो गई थी। कियाना के साथ आर्यांश को देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। दीवा ने महसूस किया कि वो आर्यांश के प्यार करने लगी है, लेकिन आर्यांश जैसा इंसान उसके प्यार की कभी इज्जत नहीं करेगा। दीवा ने मन ही मन फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे आर्यांश उसे नफरत करने लगे और खुद ही उससे दूर कर दे। दीवा मॉल के एक एरिया में बैठकर आंसू बहाते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी वहां एक शख्स आया जिसने दीवा की इस अजीब हरकत पर उसे टोका। दीवा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर बजाज, आप यहाँ? अपने सामने प्रियंक को देखकर दीवा हल्का सा चौंक गई थी। प्रियंक ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मॉल आया हुआ था, तभी देखा कि एक लड़की बैठकर आंसू बहा रही थी। उसकी पीठ तुम्हारी तरह लग रही थी तो सोचा आगे जाकर कन्फर्म कर लूं कि कहीं तुम ही तो नहीं। प्रियंक बहुत हल्के अंदाज में और मुस्कुराकर बातें कर रहा था, जबकि आर्यांश कभी ऐसा नहीं करता था। उसका सवाल सुनकर दीवा हड़बड़ा गई। प्रियंक आगे बोला, आगे आने पर पता चला कि ये बेवकूफ लड़की तुम ही हो। बेवकूफ? मैं बेवकूफ कैसे हुई? दीवा ने नाराजगी जताते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर पूछा। प्रियंक उसकी हरकतों को गौर से देख रहा था। वो बहुत प्यारी थी। उसका स्वभाव भी काफी शांत और सौम्य था। उसने महसूस किया कि वो दिखने में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और मासूम भी थी। बेवकूफ इसलिए क्योंकि यहां अकेले में ऐसे रोते हुए कौन हंसता है भला, प्रियंक ने हल्के अंदाज में कहा। मैं नहीं रो रही थी और ना ही हंस रही थी। तुम कब से मुझे देख रहे थे? दीवा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। वो प्रियंक से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब वो आर्यांश के दुश्मन सौरभ बजाज का बेटा था। प्रियंक अचानक उसके बिल्कुल पास आया और उसके कान के करीब आकर बोला, नहीं बताऊंगा। उसकी इस हरकत पर दीवा को बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने जल्दी से प्रियंक को खुद से दूर धकेल दिया। उसके कान लाल होने लगे थे। दीवा के ऐसा करने पर प्रियंक हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या मुझसे डर लग रहा है या इस बात से डर रही हो कि आर्यांश को पता चला तो वो गुस्सा करेगा? प्रियंक की बात सुनकर दीवा के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। तो क्या प्रियंक भी उसके और आर्यांश के रिश्ते के बारे में जानता था? दीवा ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। वो अनजान बनते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बहाने मत बनाओ, मुझे सब पता है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो किससे प्यार करता है, प्रियंक ने सिर हिलाकर कहा। उसके शब्दों में भले ही कोमलता थी लेकिन उसकी आंखें दीवा पर ही टिकी हुई थी। वो उसकी आंखों के भाव पढ़ना चाहता था। मिस्टर बजाज, आपको कोई हलतफहमी हुई होगी, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो प्लीज बेवजह मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़िए, दीवा ने नाराजगी जताते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि लोग बेवकूफ हैं, उन्हें नहीं समझ आएगा कि तुम आर्यांश के विला में अंदर क्या करने जाती हो, प्रियंक ने कहा और अचानक दीवा का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो जानता हो कि दीवा उसके सवालों से बचकर भाग जाएगी। दीवा के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो नजरें झुकाकर खड़ी थी। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस उनकी प्राइवेट डॉक्टर हूँ, दीवा ने घबराहट में झूठ बोल दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था कि प्राइवेट डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बेड शेयर भी करते हैं, प्रियंक ने तंज कसते हुए कहा। दीवा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। प्रियंक अपनी बातों से उसका अपमान कर रहा था, लेकिन उसका और आर्यांश का रिश्ता भी ऐसा ही था। वो कोई इज्जत के लायक नहीं था। दीवा ने पैसे के लिए आर्यांश के साथ सौदा किया था। दीवा ने फिर भी अपनी आंखों में आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है? मुझे अब जाना है। इतना कहकर दीवा ने अपना हाथ ऊपर किया जिसे प्रियंक ने पकड़ रखा था। प्रियंक ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। दीवा जाने के लिए दूसरी तरफ पलटी। प्रियंक ने पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम जानती हो ना इस बारे में कि वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा? प्रियंक की बात सुनकर दीवा के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। वो जानती थी कि आर्यांश उससे प्यार नहीं करेगी, लेकिन जब उसने कभी नहीं शब्द सुना तो उसका दिल टूट गया। दीवा तुरंत उसकी तरफ पलटी और खुद को मजबूत करते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, बेहतर होगा कि आप कभी मेरे सामने ना आए, और अगर आएंगे तो भूल जाइए कि हम एक दूसरे को पहचानते भी हैं। इस तरह से भागने से कुछ नहीं होगा, चलो साथ में डिनर करते हैं, फिर शायद मैं तुम्हारी इस मामले में कुछ हेल्प कर पाऊं, उसे अपने साथ रोकने के लिए प्रियंक ने जो भी बहाना समझ आया वो बता दिया। दीवा सोच में पड़ गई। तभी प्रियंक ने फिर कहा, मेरा यकीन करो, मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, दीवा ने गुस्से में कहा। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा, प्रियंक ने मुस्कुराकर कहा। दीवा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। क्या आर्यांश की फैमिली के सारे लोग ऐसे ही थे, जो दिखने में हैंडसम थे लेकिन बातें अजीब करते थे? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बस मुझे तुम पसंद नहीं हो, दीवा ने सीधे सीधे कहा। अच्छा, ऐसा क्या? तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हें वो बता दिया जो तुम सुनना नहीं चाहती थी। सच को एक्सेप्ट करो, वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा, प्रियंक ने अपने शब्दों को दोहराया। दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गई थी कि इससे बहस करना बेकार है। दीवा वहां से जाने लगी तभी प्रियंक ने उसका हाथ पकड़ लिया।
मेरा हाथ छोड़ो, दीवा ने घूमते हुए कहा। नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो शोर मचा सकती हो, लोगों को यही लगेगा कि हम एक कपल हैं जिसके बीच में लड़ाई हुई है, प्रियंक ने कंधे उचकाकर कहा। दीवा को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। पहली बार जब वो उससे मिली थी तब वो ठीक ठाक लगा था, आर्यांश से अलग वो काफी तमीज से बात करता था। दीवा के उसे और कुछ कहने से पहले प्रियंक ने शांत लहजे में कहा, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ में डिनर पर जाएंगे, मुझे बात तो करनी है, चलते हैं ना? ठीक है, लेकिन मेरा हाथ छोड़ो, दीवा ने धीरे से जवाब दिया। वैसे भी उसी की गलती थी जो उसने जल्दबाजी में प्रियंक को डिनर के लिए हाँ कह दिया था। आज संडे नहीं था, लेकिन फिर भी वो फ्री थी, इसलिए उसने इस डिनर के प्रॉमिस को पूरा करने का सोचा। प्रियंक ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया और दीवा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। दीवा भी बिना किसी हिचक के बैठ गई। वो जानती थी कि प्रियंक सच जानता है कि वो आर्यांश की गर्लफ्रेंड थी, तो प्रियंक उसके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा। जब प्रियंक गाड़ी में बैठ गया तो दीवा को हल्की घबराहट होने लगी। उसने मन ही मन कहा, इस इंसान के साथ अकेले गाड़ी में बैठने से अच्छा है कि मैं आर्यांश के साथ एक घर में रहूं, ये उससे ज्यादा डरावना लग रहा था। आर्यांश का ख्याल आने पर दीवा उसके बारे में सोचने लगी। उसे यही लगा कि आर्यांश इस वक्त कियाना के साथ न जाने क्या कर रहा होगा। परेशानी में वो अपनी चोट लगी पट्टी से खेल रही थी। ड्राइव करते हुए प्रियंक का ध्यान दीवा की तरफ गया। वो जो हरकतें कर रही थी वो बेचैनी की निशानी थी। प्रियंक को दूसरों के चेहरे के भाव पढ़ने बखूबी आते थे, उसने साइकोलॉजी पढ़ा था। हालांकि उसे इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने पिता के कहने पर उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि ये फ्यूचर में उसके काम आएगा। अब दीवा को देखकर उसे समझ आ गया था कि सच में साइकोलॉजी काम की चीज है, ये सामने वाले के बिना बताए उसके दिल के राज खोल देती है। तो तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही है, प्रियंक ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। दीवा चौंक गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसका मन पढ़ लिया हो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ रहे या किसी के साथ कुछ भी करे, मुझे कियाना और उसके रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? दीवा ने खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश की। शाब बात है, चलो मान लिया, प्रियंक हंसते हुए बोला। प्रियंक की हंसी इस वजह से थी क्योंकि अभी तो उसने दीवा को परखना शुरू ही किया था। उसके आधे अधूरे सवाल के जवाब में दीवा ने अपने दिल की पूरी बात उसके सामने रख दी थी। दीवा को इसका एहसास होने पर उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे। जो समझना है समझो, लेकिन मेरा आर्यांश के साथ कोई रिश्ता नहीं है, दीवा ने चिढ़कर कहा। अब वो प्रियंक के बातों के जाल में नहीं फंसने वाली थी। ठीक है, फिर मैं खुद ही समझ लेता हूँ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। वैसे तुम अकेली नहीं हो, और भी काफी सारी हैं, तभी तुम्हें बताने में शर्मा रही है ना, और तुम झूठ बोल रही हो, प्रियंक ने भौहें उठाकर कहा। दीवा का मन किया कि वो प्रियंक का गला दबा दे। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दांत पीसते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम अपने इमोशंस के साथ तो ईमानदार रहो, प्रियंक ने सार्कास्टिकली कहा। मैं कितना भी सच बोल दूं तुम नहीं मानने वाले हो, तो बेहतर है ना कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे बहस नहीं करनी, दीवा ने टॉपिक बंद करते हुए कहा। प्रियंक कुछ पल के लिए चुप हो गया, तभी उसकी नज़र दीवा की कलाई पर पड़ी। उसने कहा, फिर बताओ इस हाथ की नस क्यों काटी थी, पागल हो तुम, कोई अपने हाथ की नस अपने आप क्यों काटेगा? दीवा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवा का हर एक शब्द प्रियंक के सामने उसका एक राज खोल रहा हो। ठीक है, मैं तुमसे इस बारे में पूछकर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, प्रियंक ने गहरी सांस लेकर कहा। अगर आर्यांश ने तुमसे शादी कर ली तो रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ बनूंगा, तुम्हें मुझे भैया कहकर बुलाना पड़ेगा, ऐसा तब होगा जब हमारी शादी होगी, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी, दीवा ने जवाब दिया। लेकिन अगर वो करना चाहेगा तो तुम पीछे नहीं हट पाओगी, तुम्हें करनी ही पड़ेगी, प्रियंक ने गंभीर आवाज में कहा। वो कुछ पल रुककर आगे बोला, मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ, वो बहुत जिद्दी है, उसे जो चीज चाहिए होती है वो उसे कैसे भी करके हासिल कर लेता है। दीवा बिल्कुल चुप हो गई। प्रियंक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, उसे समझ नहीं आया कि आखिर आर्यांश ने दीवा जैसी सीधी साधी लड़की को ऐसे ही तो नहीं चुना होगा, जरूर वो उसे किसी न किसी तरीके से उसे जुड़कर चाहता था, बस उसे कैसे भी करके इस राज के बारे में पता लगाना था। सोचो अगर आर्यांश को इस डिनर के बारे में पता चला तो दीवा जिंदगी भर खाना खाना भूल जाएगी। अच्छा ये बताइए कि प्रियंक किसे इरादे से दीवा के करीब आया है, कोई आइडिया? चलिए आप समीक्षा में बता दीजिएगा, इसी बहाने आप समीक्षा तो करेंगे, अगले चैप्टर पर मिलते हैं।